ओम शांति। 27 दिसंबर 1983, जो अभी संडे को अव्यक्त मुरली आएगी, उसमें से एक सवमान उठाया है। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। देखिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि निश्चय किसको बोलते हैं। निश्चय का मतलब है जहां पे सिर्फ आपके सामने एक विकल्प है, एक ही संकल्प है, बहुविकल्प नहीं है। जैसे हम ब्राह्मण परिवार में आए, बाबा को जाना, तो क्या अभी भी बुद्धि पीछे जा रही है? तो हमें निश्चय बुद्धि बनने की जरूरत है। देखिए, निश्चय बुद्धि माना क्या, कि जब एक बाप पर पूरा भरोसा बन गया हमारा, तो हमें अब क्या है, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, अचल अडोल होनी चाहिए, अडिग होनी चाहिए। यह निश्चय बुद्धि की निशानी है। और जब जब हम निश्चय बुद्धि होंगे, तब तब हम क्या बनेंगे, विजयी। देखिए, आज की बाबा की साकार मूल्य, उसमें बाबा ने बोला है कि तुम्हारा यादगार क्या है, गुरु शिखर। तो हमें बार बार ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूं। इसलिए हमें बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि हमें तीन बातों पे बनने की जरूरत है। एक, अपने आप पर निश्चय। दूसरा, बाप पर निश्चय। तीसरा, ड्रामा पर निश्चय। अब जब बात करते हैं कि मैं कौन हूं, देखिए पहले आइडेंटिटी का नहीं पता था, लेकिन जब बाप मिला तब हमें यह समझ आया कि मैं कौन हूं। मैं वो महावीर हूं, मैं वो बहादुर हूं, जिसे बाबा ने आकर के हमें जगाया है कि आप साधारण नहीं हो। इस स्मृति में आओ, सोए नहीं रहो, अभी जागने की जरूरत है। तो बार बार ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूं। दूसरा, बाबा कौन है। बाबा वो है जो सभी पहेलियों का राज है। बाबा जो सभी तालों की चाबी है। बाबा वो जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। बाबा वो जो हमें सभी खजानों की चाबी देने वाला है। तो हमें बार बार ये स्मृति रहे कि वो कौन है। वो सभी आशिकों का मासूक है, जो हमें कदम कदम पर मदद देने वाला है। तो हमें ये पूरा स्मृति रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है, कभी मैं निश्चय बुद्धि और कभी मैं संशय बुद्धि, कभी मैं सत्यु की नाव में चढ़ के जा रहा हूं और कभी दिल किया पुरानी दुनिया का, तो मैं कलयुग की नाव में चढ़ के जा रहा हूं। तो बार बार हमें यह स्मृति रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बाजोली खेल अभी भी खेले जा रहा हूं। बाजोली माना क्या, चढ़े गिरे चढ़े गिरे। तो यह खेल कब तक चलता रहेगा? तो बार बार हमें यह स्मृति रहे कि मैं कौन हूं और अभी मैं क्या कर रहा हूं। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, निश्चय बुद्धि कहते किसे हैं। एक बार की बात, एक गांव होता है जहां पे खूब 5-6 सालों से अकाल पड़ा होता है, बारिश की एक बूंद उस धरती पे नहीं गिरती। एक तपस्वी जो होता है वो वहां से जा रहा होता है, तो वहां के लोग बोलते हैं कि आप सच्चे तपस्वी हो? जी, बोले हां मैं सच्चा तपस्वी हूं। तो अगर आप सच्चे तपस्वी हो, तो इस गांव में कभी बारिश हुए जमाना हो गया है, आप बारिश करके दिखाइए। तो वो बारिश करता है, तो वो इस तरीके का संत होता है कि वो अपने साथ ढोल रखता है। वो ढोल को बजाना शुरू करता है और देखते देखते कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। सभी लोग खुश होते हैं, बोलते हैं आप बाहर कहीं नहीं जाओ, आप इसी गांव में रहो। धीरे धीरे ये जो बात है आग की तरह पूरे चारों तरफ फैल जाती है। कुछ युवा नौजवान जो ये समझते हैं कि सब पाखंड है, वो ये बोलते हैं कि इस साधु का आज हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे, ऐसे ढोल बजाने से बारिश थोड़ी होती है। वो लोग जाते हैं, वो तीन लोग होते हैं, वो जाते हैं, जाके उस संत से मिलते हैं। बोले आपके ढोल बजाने से बारिश होती है? बोले हां हां जी होती है। तो वो बोलते हैं अगर आपके बजाने से अगर बारिश होती है, तो हम बजाएंगे तो भी बारिश होगी। तो बोले ये लो ढोल और बजाओ और बारिश करके दिखाओ। पहला जो कुमार होता है, वो माना जो नौजवान होता है, वो बजा के ट्राई करता है। 1-1.5 घंटे वो बजाता है, वो थक जाता है, बारिश नहीं होती। फिर जो दूसरा फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, ला मैं करता हूं और मैं बजाऊंगा और बारिश होगी। वो दूसरा भी ट्राई करता है, वो 2-2.5 घंटे में वो भी पसीने में थक जाता है और बारिश नहीं होती है। ऐसे ही तीसरा फ्रेंड ट्राई करता है, वो भी बारिश के लिए पूरा ढोल बजाता है दिल से, लेकिन बारिश नहीं होती। उनको ये लगता है आज बारिश का मौसम ही नहीं है, बारिश कैसे होगी। बोले अब सही टाइम मिला है, साधु जी आप बजाओ और आप ढोल बजाओ, और हमें पता है मौसम तो है ही नहीं बारिश का, तो बारिश कैसे होगी। तो वो साधु ढोल लेता और ढोल बजाना शुरू करता है। वो ढोल बजाता जाता है, दोपहर का टाइम होता है, ढोल बजाते बजाते उसको 2-2.5 घंटे हो जाते हैं, कोई मौसम नहीं है बारिश का, लेकिन वो रुक नहीं रहा। वो ढोल बजा रहा है, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, शाम हो गई, 8 बजने को है, फिर देखते हैं कि धीरे धीरे बादल आने शुरू हो गए और तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। उन 2-3 जो लड़के होते उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे, हमने जब ढोल बजाया तो बारिश नहीं हुई और आपने जब ढोल बजाया तो बारिश हुई। वो बोलता है मैंने क्या संकल्प किया कि अगर मैं ढोल बजाऊंगा तो बारिश होगी और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक बारिश नहीं होगी। माना उसने 2 संकल्प किए कि जब तक मैं रुकूंगा नहीं तब तक बारिश हो नहीं जाती। तो क्या मेरा ऐसा संकल्प है कि जब तक मैं बाप समान बन नहीं जाता तब तक मैं रुकने वाला नहीं, और अगर मैंने शुरू कर दिया है तो मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं बाप समान नहीं बन जाता, वो स्टेज को मैं पा नहीं लेता। इसलिए हमें क्या है, बाप पर पूरा निश्चय चाहिए, हमारी जो स्टेज है वो हमें जरूर मिलेगी। इसलिए हमें ये पूरा स्मृति रहे कि मैं कौन हूं, मेरा भाग्य बनाने वाला कौन है, किसने आकर के मेरे आंसू पोंछे, किसने मुझे कचरे से उठा करके अपने दिल में रखा और ऐसी कीमत बनाई जो बार बार वाह वाह के गीत निकलने चाहिए। इसलिए हमें क्या है, बार बार ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूं और मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन आत्मा हूं।
ओम शांति। मेरा जो टॉपिक है संगम युग लिया मैंने। संगम युग सबसे सुंदर युग है, 5 युगों में सबसे सुंदर युग संगम युग है। इस युग में स्वयं परमात्मा हमको सम्मुख में पढ़ाते हैं। कोई भी युग में ये काम नहीं होता है। जो 2500 साल की भक्ति के बाद जो सबसे सुंदर समय आता है, जैसे बहुत गर्मी है, गर्मी के बाद जो बारिश का दिन आता है तो बहुत लोग खुशी में नाचते, इवन प्रकृति भी पूरा खिल उठ जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग भक्ति करके थक जाते हैं, भगवान को कितना अलग अलग रूप से बुला बुला करके थकने के बाद, और जो स्वयं संगम युग में परमात्मा आता है, ये वरदानों का युग है, जहां से सहज में वरदान मिलता है। भक्ति में 9 भक्ति करने के बाद वरदान मिलता है, बहुत थोड़ी आत्मा को वो प्राप्ति होती है, वो भी अल्पकाल के समय के लिए मिलते हैं। अल्पकाल के बाद वो वरदान मिल जाता है 9 भक्ति करने के बाद, यहां सहज में मिलती है और वो भी सम्मुख परमात्मा स्वयं बैठ करके वरदान की खान खोल देते हैं। बहुत ज्यादा पहाड़ी है, 3 लोग जा रहे थे, आकाशवाणी हो जाती है, रुक जाओ बोल करके, आपकी राइट साइड में यहां एक पहाड़ी है, वो मिट्टी का पहाड़ी है, इसमें जितना चाहो मिट्टी उठाओ, सवेरे 5 बजे उठ करके भक्ति भाव से उसको देखो, वो सोना हो जाता है। तो एक नंबर वाला आता है, वो कहते हैं ऐसा कभी कैसे हो सकता है, ठीक है चलो बोल रहे कोई है तो कौन सा शक्ति क्या करने का, हमको थोड़ा इतना रहता है, वो 5-10 ग्राम लेता है जेब में रखता है, वो आके निकल जाता है। दूसरा आता है वो कहता हो सकता है भगवान भी बोलता होगा, चलो ले लेंगे थोड़ा, आधा केजी इतना लेता है। तीसरा इतना खुशी होती है उसको, वो सोचता है मेरा जीवन में सबसे सुंदर दिन है, सिर्फ मेरा जीवन में दुख नहीं है, मेरा गरीबी नहीं, औरों को मैं गरीबी मिटा सकता हूं। उसने क्या किया, आसपास देख करके 100 किलो का भोरी रहता है, बहुत बड़ा, वो पूरा भर जाता है। ये दोनों हंसते उसको देख करके, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेके गए वो रात को जो सोने से पहले वो सोना को देख के सोता है, वो उसको सवेरे उठने की जरूरत नहीं, इतना निश्चय रहता है उसको। तो वो देखता है सवेरे तक के, क्यों इंतजार करो, ये तो सोना ही मैंने भगवान ने कहा मुझे। तो वो क्या करता है, ये जो दूसरा थोड़ा लेके आता वो रोज 5 बजे उठता है, उस दिन 4 बजे उठता है, उसका लगता है क्या है देखिए हमें, तो खोल के देखता है सोना हो जाता है। वो क्या करता है, 2-3 भाइयों को लेकर के वो पहाड़ी पर जाता है उसी वक्त, लेकिन वहां जाकर देखता है कुछ है ही नहीं, उधर पहाड़ी ही नहीं उधर। तो वहां उसमें आता है, दूसरा के पास आता है, दूसरा को पूछता है, हां मेरा भी हुआ लेकिन मेरे पास सिर्फ 1/2 केजी है, वहां चलेंगे तीसरी दोस्त के पास। वहां दोनों जाता है, हम मेरे दोस्त हम बिल्कुल हैं, कहते आपका, मैंने कहा रात को ही मेरा सोना हो चुका है, लेकिन हम तीनों दोस्त हैं, मेरे को देव बोलते हैं नहीं ये मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आपके उस वक्त कान बंद थे क्या जब भगवान आपको बोल रहे थे, इसलिए आपको नहीं है। तो वो क्या करता है, जितना लोगों को बांटना बांट करके अपने को जितना देखता उतना। इस प्रकार से ये संगम युग में जितना लेना ले सकते हैं, वरदान स्वयं परमात्मा दे रहे हैं, वरदान का खान का समय है। संगम युग में हर चीज सहज हो जाता है। संगम युग में वरदान लेना और देना इतना सहज है, बहुत सहज है। जैसे कोई व्यक्ति को, कोई जब बच्चे के हाथ में खिलौने होता है वो खेलता है, कोई बहुत अमीर बच्चा होता है उसके पास हजारों खिलौना रहता है, लेकिन एक गरीब बच्चा रहता है उसके पास एक ही रहता है, वो भी टूटा हुआ रहता है, उसको कितना खुशी से खेलता उसी में। ऐसा भक्ति मार्ग में हमने भगवान के लिए दीदार के लिए कितना क्या किया, और 2500 साल के बाद ये सुंदर वक्त आता है। ये सवेरे का समय है, ये अमृत का समय है, अमृत बांटने का, अमृत लेने का समय है। भक्ति मार्ग में एक छोटा अमृत बूंद के लिए कितना तपस्या की लोगों ने, लेकिन यहां इस वरदान का समय है। और भगवान कहते हैं, स्वयं मैं आकर के बोलता है, ये वरदान की जितना आप बांटना बांटो, और एक को पदम करके रिटर्न देता है। संगम युग में दादी एक बार बोल रही थी, एक अगर बूंद डालता है, एक अनाज का दाना बाबा घर में डालता है, हजार गुना, हजार बोरी मिलता है, 1000 kg। तो संगम युग में जितना हम संकल्प, जो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, उस संकल्प से इतना हमको प्राप्ति होती है, उसको सोचना ही जरूरत ही नहीं है। संगम युग में आप वरदान लेने का सिर्फ वरदान नहीं है, हर चीज के बाबा से आप ले सकते हैं और स्वयं परमात्मा से बैठ के बात कर सकते हैं। ये दूसरा और युग में नहीं होता है। और इस युग में सारी सृष्टि का परिवर्तन इस समय होता है। इस युग के इतना एक इंपॉर्टेंस है, एक एक सेकेंड भी बाबा कहते एक एक साल की बराबर है। तो हम सौभाग्यशाली आत्मा सभी हैं, इस संगम युग में हम जो साथ में मिले हुए हैं, सारी कल्प में सबसे ऊंच पाटदारी है। तो इस संगम युग में सवेरे अभी सचिन भाई बता रहे थे, वो प्रकृति के बारे में बता रहे थे, प्रकृति कितना साथ दे रहे अभी भी दुनिया में क्या चल रहा है, और यहां संगम युग में मधुबन में हम लोग सवेरे जाते हैं, कितना सुंदर वातावरण रहता है। इसलिए हम संगम युग में जिएंगे, हमेरे इस संकल्प रहे, हम संगम युग में हमेशा रहेंगे साथ में, और बाबा के साथ है ये अनुभव हमेशा साथ रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जो कल चलने वाले अव्यक्तवाणी है उनके आधारित हमने सोमान निकाला था, मैं विजय रत्न आत्मा हूं। तो ये संगम युग पर हम सभी यानी ब्राह्मण आत्मा है, ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमें विजय माला का मनका बनना है। लेकिन विजय माला का मनका बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यदि एक मन का दूसरे मन के से दूर रहे तो माला नहीं बन सकती है। इसके आधारित मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि एक जंगल था और जंगल में बहुत विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। उस रास्ते से एक दिन एक शिकारी गुजरा तो उसने देखा कि बहुत सारे कबूतर है, तो यदि शिकार किया तो सब मुझे मिल जाएगा। इसलिए उसने वहां पर एक जाल बिछाया, उसके ऊपर थोड़े अन्न के दाने डाले और वो कबूतर उस जाल में फंसेंगे इसकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़े देर के बाद एक एक कबूतर वो अन्न का दाना खाने के लिए नीचे आने लगे और उसमें फंसते गए थे। एक एक करके सारे कबूतर उस जाल में फंस गए। तो फंसने के बाद उस कबूतर को लगा सभी को अपन इस जाल में फंस गए, तभी वो हमें ले जाएंगा शिकारी। तो फिर उनमें से ये कबूतर ने क्या किया, जो हेड था उसका यानी लीडर था, उसने सबके अंदर उमंग उत्साह भर दिया कि आप शक्तिशाली हो, आप अपने शक्ति के साथ उड़ो। तो सब उड़ने लगे, तो जाल लेकर भी उड़ने लगे। जाल के साथ उड़े तो वो शिकारी देखता ही रहा। और बाद में उनका जो एक मित्र था चूहा, उसके पास गए, उसने वो जाल को काट दिया और उसको फ्री कर दिया। तो इस प्रकार यदि हम सब मिलजुल कर रहे तो एक दूसरे के सहयोग से कितनी भी विकट परिस्थिति आए तो उस पर क्या विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जो विजय रत्न है तो वो क्या करेंगे, यानी स्वयं माया से और प्रकृति के 5 तत्वों से और कितनी भी विकट परिस्थिति आए उसमें से कभी हार नहीं खाएंगे, यानी वो हर इस पर यानी विजय प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात, विजय रत्न किसको कहेंगे, यानी जो स्वयं में परिवर्तन करेंगे, जिनको स्वयं पर पूरा यानी संपूर्ण निश्चय रहेगा, और जो यानी जो अविनाशी धन है उसको संपन्न यानी ये करेंगे अविनाशी धन का संपूर्ण ये रहेगा उनके पास संपन्न रहेंगे वही यानी विजय रतन बन सकती है। तो विजय रतन के लिए बाबा ने बताया निश्चय बुद्धि चाहिए। यदि हम हमारे अंदर निश्चय बुद्धि रहे तो वहां पर विजय निश्चिंत है। यदि विजय में कोई कमी कमजोरी है तो इसका कारण क्या है कि निश्चय में कमी है यानी निश्चय में कमी है। तो यदि हम स्वयं के प्रति निश्चय में कमी बाप के प्रति या नॉलेज के प्रति यदि निश्चय में कमी है तो विजय में ही कमी रहेगी। इसलिए कहते हैं ना यानी निश्चय बुद्धि विजयंती जहां पर निश्चय वहां पर विजय है। तो हमें इस समान में रहना है कि हम विजय आत्मा है कि स्वयं भगवान हमारे साथ है उनकी सर्वशक्तियां भी हमारे साथ है तो हमारी हार हो नहीं सकती। तो इस प्रकार इस नशे में रहेंगे तो हम हर परिस्थिति में विजय हो जाएंगे और पुरुषार्थ में आगे बढ़ के विजय माला का मनका बन जाएंगे। अच्छा ओम शांति।
ओम शांति। तो मुरली से सामान है मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुरली में कहा भिखारी नहीं सदा के अधिकारी बनो और हम सभी के इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य भी यही है कि अपना स्वराज लेना है। तो ये सामान लिया है कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहाँ राजा का राज्य पर संपूर्ण अधिकार है और उसका राज्य हर प्रकार से सफल है संपन्न है। उसके राज्य पर किसी का कोई आधिपत्य नहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। तो ऐसे राज्य के लिए सात बातें होनी चाहिए या सात बातें यदि हैं तो उसे कहेंगे कि वो स्वराज्य है। जिसमें कि पहली बात है कि राजा योग्य हो। एक योग्य राजा अगर होगा तो उसका स्वराज है। अगर योग्यता नहीं तो वो राज कभी भी जा सकता है उस राज में कभी भी हलचल हो सकती है। तो योग्य राजा अर्थात बुद्धिशाली बुद्धिमान बुद्धिमान भी हो बलशाली भी हो चरित्रवान भी हो प्रजापालक भी हो तो राजा की जो क्वालिटीज हैं वो सारी उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात है कि राज के जो कर्मचारी हैं जो सहयोगी साथी हैं राजा के उनका राजा के प्रति या राज्य के प्रति पूरा फेथ हो वफादार हो। ऐसा नहीं कि वर्तमान के समय के हिसाब से जैसे कोई अधिकारी होते हैं तो वो करप्ट होते हैं अपने नियमों को तोड़ करके अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। तो राज्य के जो अधिकारी हैं जो राज का संचालन करने वाले हैं राजा को सपोर्ट करने वाले हैं वो वफादार हों ईमानदार हों राजा के प्रति और राज्य के प्रति। तो बाबा कहते हैं आपके जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं आपके लिए आत्मा राजा है तो इंद्रियां कर्मचारी हैं। तो इंद्रियां राजा के अनुसार ही सारा कर्म करें अपनी स्वेच्छा के लिए अपनी खुशी के लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई भी राज्य के जो नियम हैं राजा की जो मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन न करें। तीसरी बात है कि सत्ता पावर सेना जो दुश्मन से सेफ्टी करती है रक्षा करती है। तो बाबा कहते हैं आपका दुश्मन जो माया है जिसके बहुत सारे सैनिक हैं जो आप पर आपके राज्य पर अटैक करती है आपके राज्य को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है तो आपकी सेना ऐसी सशक्त हो शस्त्रों से अस्त्रों से जो माया के किसी भी दुश्मन का सामना करके उसको पहले से ही खत्म करें। और अगली बात है संपत्ति। संपत्ति राज्य के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। संपत्ति में भी अचल संपत्ति और चल संपत्ति भी हो क्योंकि अचल संपत्ति भी जब कोई कारण बनता है कोई आपदा आती है तो उसमें वो राज्य को मदद करती है। तो ब्राह्मण जीवन में भी जो हम स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं हमारे पास भी चल और अचल दोनों संपत्तियां होना अति आवश्यक है। तो चल संपत्ति क्या है रोज की मुरली है रोज की क्लासेस हैं जो हम सुनते हैं दूसरों को सुनाते भी हैं ये ब्राह्मण जीवन के लिए जैसे कि चल संपत्ति है और अचल संपत्ति जिसको हमें जीवन में हमने धारण किया हुआ है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो जब भी जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है कारण या कारण है जैसे कि किसी कारण से हम कई दिन तक मुरली नहीं सुन सकते नहीं सुन पा रहे या मुरली हमको नहीं मिल रही है
तो उसमें क्या काम करेगा? जो हमारे पास पहले से जमा होगा, अचल संपत्ति होगी। तो इसी प्रकार से जो स्वराज है उसके लिए जो बहुत सारी कुछ बातें हैं जो इन पर हमें अमल करना आवश्यक है, या ये बातें हैं तो कहेंगे कि हम स्वराज अधिकारी हैं। साथ साथ जो राज्य का लॉ और ऑर्डर होते हैं, जो नियम और कानून हैं, मर्यादाएं हैं, उनको फॉलो करना भी अति आवश्यक है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें स्वराज अधिकारी बनने के लिए जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको फॉलो करना आवश्यक है, या उन पर हम चल रहे हैं तो कहेंगे कि हम स्वराज अधिकारी हैं। तो जो आज का विशेष टॉपिक था, समान था कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, तो उसके लिए कुछ बिंदु रखे। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली से सोमान है, सुदर्शन चक्कर, संडे की मुरली, उसमें सुदर्शन चक्कर के बारे में बाबा ने बताया। सुदर्शन चक्कर जो है वो सर्व समस्याओं का हल है। जीवन में जितनी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, अगर हमें स्वयं के बारे में कि उन परिस्थितियों का निर्माण कौन कौन से बिंदु थे जिसके कारण वो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई, अगर स्वदर्शन हमारे साथ में है, स्वयं का ज्ञान अच्छी तरह से, तो उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। तो बाबा ने मुरली में जिक्र किया कि सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं की कुछ निशानियां बताई हैं। सुदर्शन चक्रधारी जो सदा प्रसन्नचित रहेंगे, सब प्रश्नों से पार, कोई प्रश्न नहीं। तो स्वयं का दर्शन जब तक हम करते रहते हैं, आत्मा जब अपनी सीट पर सेट है, वो स्वयं की शक्तियों से एकदम परिचित है, तो अपने ऊपर एक फेथ रहता है, आत्मविश्वास को बल मिलता है, बढ़ता है, जिससे जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के जो भी परिस्थितियां हैं उनको सामना करने के लिए आत्मा सशक्त बनती जाती है। क्योंकि स्वयं का दर्शन सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, और विशेष तौर पर संगम पर आत्मा जहां फुल चार्ज हो रही है, तो सुदर्शन चक्र की सीट पर बैठकर जो भी हमारे अनेक प्रकार के विकर्म हैं, या संबंधों में जहां कड़वाहट है, या संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्तों में दरार पड़ रही है, तो सुदर्शन चक्र के माध्यम से हम इन सारी परिस्थितियों को सहज रूप से पार कर सकते हैं। अगर सुदर्शन चक्र की हमें स्मृति नहीं है तो दूसरा चक्र कौन सा फिरता रहता है? परदर्शन चक्र। और परदर्शन चक्र ही हमारी सब समस्याओं का आधार है, मुख्य आधार है, समस्याओं का आधार परदर्शन। तो बाबा कहते हैं जितने जितना सुदर्शन चक्र फिराते जाएंगे तो जीवन में सदा खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, रोएंगे नहीं। जैसे कल के मुरली में थे, कल के मुरली में भगवान बाबा के महावाक्य थे, कौन से थे कि तुम कौन सी दुनिया में, अभी कौन सी दुनिया से निकल के जा रहे हो, रोने की दुनिया से। आज की मुरली में भी है कि बाबा तुमको सिखलाते हैं जेल से छुड़ाने के लिए, क्या वकालत। बाबा बैरिस्टर है और हम सब बच्चों को वकालत सिखलाते हैं, रावण की जेल से कैसे छूटना है। तो रावण की जेल से छूटने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दिया हम सबको, सुदर्शन चक्र। अगर ये हमारी उंगली पर है तो, अगर हमारी उंगली पर नहीं है तो दूसरे के सुदर्शन चक्र को अगर देखते रहेंगे तो हमारा ही गला कटता रहेगा। हां जी, उंगली बदलती रहेंगी, एक ही उंगली में होना चाहिए। तो दूसरों को देखने के बजाय, दूसरों के चक्कर को देखने के बजाय, स्वयं के सुदर्शन चक्र को हमें संभाल के रखना है। वास्तव में हमारी जो स्थिति है, गिरती कब है? जब हम अपनी सीट से उतर जाते हैं। जैसे बताया कि योग्य राजा जो है स्वराज्य, या वो अपनी क्षेत्र पर या अपने राज्य पर आधिपत्य तभी कर सकता है जब पहले उसमें योग्यता हो, वो चारी सारी जो चल अचल संपत्ति हो, उसको एक निश्चय है कि मैं प्रजा का पालक हूं, उसको विश्वास है मैं कर सकता हूं, क्योंकि सारी योग्यता उसमें है।
तो ये हमें विशेष तौर पर अनेक प्रकार की योग्यताओं से सुसज्जित करने के लिए सुदर्शन चक्र जो है हमें खास मदद करता है, जिससे हमारा जीवन निर्विघ्न बनता है, ना केवल हमारा बल्कि औरों को भी हम निर्विघ्न बना सकते हैं। बाबा कहते हैं आज के मूल्य में भी है, कल भी था परसों भी था, कि तुमको पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, धारण करना और कराना है। तो जब तक हम स्वयं हर चीज का अनुभव नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को भी नहीं करा पाएंगे। वो भले शाब्दिक तौर पर हम किसी के सामने ज्ञान को अच्छी तरह प्रस्तुत कर पाएंगे, लेकिन जब तक हमारे वो रगों में नहीं समाया हुआ है, हमने उसका गहराई से एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, तो वो सामने वाले को थोड़ी देर तो इफेक्ट करेगा, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं। लेकिन सदा काल के लिए वो, अगर वो समस्याओं से मुक्त हम स्वयं होना चाहते हैं या दूसरों को करना चाहते हैं, तो ये जो बाबा ने हमको अस्त्र शस्त्र दिए हैं, इनको हमेशा अपने साथ रखकर उनका पूरा सदुपयोग करने के लिए पूरी विधि भी चाहिए। तो उसको हमको सुदर्शन चक्र के बारे में थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र क्या चीज है, उसको चलाना कैसे है, कब चलाना है, कहाँ रखना है संभाल के, ये सारी हम खुद के चिंतन को अगर बढ़ाते जाएंगे तो इस सुदर्शन चक्र समय पर काम करता रहेगा, अन्यथा उसको भी जंग लग जाएगा। और जब समय पर धार नहीं रहेगी तो वो काम नहीं करेगा, इस समस्या को काटेगा नहीं। तो इस तरह सुदर्शन चक्रधारी हमको निष्फल हर्ष में बनकर रहना है। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली से एक सामान उठाया हूं कि मैं ज्ञान सितारे हूं। बाबा ने लास्ट में कहा है कि कई सारी वृक्ष का लकड़िये थे, अभी सभी एक चंदन की लकड़ी बनने आए हैं। तो बाबा ने वहां कहा है कि बाबा ज्ञान सूर्य है, ब्रह्ममा ज्ञान चंद्रमा है, और हम जितने भी आत्माएं हैं हम ज्ञान के सितारे हैं। और एक गीत भी है कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती का सितारे हैं। इस धरती में हम हैं, हम चमकते हैं, तो हमारी जो चमक से जो बाहर की दुनिया में आत्माएं हैं, जिसको कुछ अता पता नहीं है ज्ञान का, फिर भी उनको भी रोशनी मिलता है। इसलिए हम कितने उच्च क्वालिटी के आत्माएं हैं, जिसकी रोशनी से इस दुनिया का दूसरे आत्माएं भी खुश होते हैं, उनको भी थोड़ा सा शक्ति सकाश मिलता है। आसमान में कई सारी सितारे होते हैं, कोई सितारे चमकते हैं अपनी रोशनी से, कोई चमकते हैं सूरज की रोशनी से, कोई सितारे एक ही स्थान में स्थिर रहते हैं, कोई सितारे कभी उदय होते हैं कभी अस्त होते हैं, कोई उच्च पुंछ वाले भी होते हैं, पुच्छ तारा कोई टूटते हैं कोई गिरते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा होता है, कोई सितारे कुछ समय चमकते हैं और फिर बुझ जाते हैं, कोई हमेशा चमकते हैं। तो हम इसमें से क्या है, अपन को ज्ञान सितारा बनकर चमकना है। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिए है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके जो बुझे हुए जो दूसरे सितारे हैं, उस सितारे को भी चमकाना है। हमें बाबा ने ये सेवा दिए है। सबसे पहले तो हमें खुद को ही चमकाना होगा, उसके लिए इस सोमान को अभ्यास करना जरूरी है। सोमान ऐसी चीजें हैं जो हम बार बार रटेंगे तो हम उसकी स्वरूप बन सकते हैं। अगर बार बार रटते नहीं है, उसको स्मृति में नहीं लाते, तो वो कोई काम नहीं देता है। सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं कि कोई भी सोमान अगर आपकी लाइफ में धारण करना हो तो 21 दिन तक एक ही समय और एक ही जगह में बैठ कर आपको उसको क्या करना है, साधना करना है, रटना है। अभी दुनिया में भी जो सिद्धियां लेना होता है किसी को, तो उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत उसको रटेगा, नीति नियम सब कुछ पालन करेगा, तब जाके उसकी लाइफ में वो आएगा और दूसरों को वो सेवा में भी लगा सकते हैं। वैसे ही हम भी ज्ञान सितारे बनना है तो हमें ये सामान तो लेना ही है, और दूसरी चीज क्या है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूरज है, उस ज्ञान सूरज से मैं आत्मा में क्या है, वो रोशनी आ रहा है, मुझ में पड़ रहा है, और मेरा जितने भी अज्ञान अंधेरी रूपी जो पर्दे थे वो सब निकल रहे हैं, और वो सब खत्म होते होते मैं ज्ञान से भरपूर होकर चमक रहा हूँ, और इस दुनिया का जितने भी आत्माएं हैं वो मुझे देख रहे हैं, और उस आत्माओं को
ये ज्योति मिल रही है और वो भी क्या हो रहे, अपनी लाइफ को परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। ऐसे अपन को इस सोमान को रटना है। एक कहानी है कि जो बीरबल और अकबर का आपस में द्वंद्व हुआ और बोला कि देखो ये इतनी ठंडी है, ये पानी ऐसा ठंडा है, कोई रात भर यहाँ बैठ सकता है? तो बीरबल ने बोला हो सकता कोई बैठ भी जाए, तो चलो ऐलान करो। तो फिर एक गरीब आया और बोला माँ मैं बैठूंगा, इतनी मिलता है इनाम तो बैठूंगा। और वो रात भर उस पानी में रहा और सुबह जाके देखा, अकबर ने सोचा था मर गया होगा, पर वो मरा नहीं, जिंदा ही है। और पूछा तुम कैसे यहाँ पर इतनी रात बिताया? उसने बोला बहुत दूर एक छोटी सी ज्योति जगह था, वो दीप को देख के मैं रह गया। तो फिर अकबर ने फिर से बोला तो तूने वहां का जो गर्मी लेके तू यहां बैठा, तुझे मिलेगा नहीं कुछ गिफ्ट। फिर बीरबल ने और ट्रिक लगाए। तो ऐसे ही हम भी एक छोटी सी दीप कहीं जलते हैं तो दूर दूर तक की आत्माओं को रोशनी मिलता है और वो भी माया की ठंडी से बच जाएगा और वो भी रोशनी में आ जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली से सोमान उठाया, मैं भाग्यवान आत्मा हूं। कहते हैं सारे युगों में श्रेष्ठ युग है संगम, उसमें भी स्वयं भगवान ने हम आत्माओं को चुना। बाबा ने उसमें कहा है कि भिन्न भिन्न डालियां, अरे एक एक हम डालियां थे उसको एक वृक्ष बनाया, और वृक्ष की तुलना बाबा ने चंदन के वृक्ष से की। जो चंदन का वृक्ष होता है वो बहुत ही मूल्यवान और सुगंधित होता है। तो ऐसे बाबा ने हमें अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट शहर गांव से या देश विदेश से उठा के अपने परमात्म कार्य अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें चुना है। तो ऐसे भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे अंदर अनेक कमी कमजोरियां थी और उस सभी कमी कमजोरियों को स्वयं भगवान जानते थे, फिर भी वो कमी को ना देखते हुए वह हमारी एक विशेषताओं को देखे और एक विशेषताओं के कारण हमें अपने कार्य में लगाया। बाबा ने एक सकार मुरली में कहा कि मुझे चिंता होती है बच्चों की, कि मैं अपने बच्चों का भाग्य कैसे बनाऊं। तो ऐसे मूल्यवान हम हीरे हैं जिसे भगवान को चिंता होती कि मैं अपने बच्चों का भाग्य कैसे बनाऊं पूरे 84 जन्मों के लिए, ताकि उसे किसी के सामने झुकना ना पड़े, रोना ना पड़े, गिरना ना पड़े। फिर भी अगर हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते तो हमारी स्थिति क्या होती है। तो स्वयं भगवान चिंता हमारी करते हैं तो हमें भी उनका ज्ञान का चिंतन मनन और श्रीमत का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए, नहीं तो फिर हम भी वही उसी लिस्ट में आएंगे। मूल्यवान हीरे थे लेकिन उस हीरे के मूल्य हम नहीं समझ पाए, फिर हम कौड़ी के भाव बिकेंगे एक दिन, रावण खींच लेगा। बाबा ने कहा ना कल ही, अगर बाप का हाथ साथ छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, है ना? तो बाबा कहते अगर बाबा का हाथ सदा साथ रहे तो हम मूल्यवान हीरा रहेंगे। इसलिए संगमयुग की वैल्यू और संगमयुग के महत्व को जानना और स्वयं को मूल्यवान और भाग्यवान समझते हुए जो बाबा हमारे भाग्य लिखने का कलम हमें दिया है, उस कलम से जितना चाहे हम उतना अपना भाग्य श्रेष्ठ लिख सकते हैं। दूसरे के भाग्य को देखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें श्रेष्ठ कलम मिला है, उससे हम श्रेष्ठ भाग्य लिख सकते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक जो जो भाग्य बाबा ने दिया, चाहे श्रेष्ठ कर्म हो, चाहे अपने बोल से, व्यवहार से, कर्म से, ऐसे हम मूल्यवान बनना है। भाग्यवान भी है तभी मूल्यवान बन सकते हैं। जैसे भाग्य होता है उसी का ही मूल्य होता है, नहीं तो वो मूल्य कोई नहीं काम का नहीं। ऐसे भाग्य हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाग्य दिए बाबा ने। स्वयं भगवान को देखने का भाग्य सकार रूप में, आज तक हम निराकार के रूप में महिमा करते हैं भगवान की, लेकिन स्वयं भगवान सकार रूप में हमें डायमंड हॉल में मिलते हैं। ये सबसे बड़ा भाग्य है कि हम आंखों से सम्मुख भगवान को देख सकते हैं, और किसी युग में हम भगवान को नहीं देख सकते, चारों युगों में नहीं देख सकते। स्वयं भगवान के मुख से ज्ञान सुनने का भाग्य ये केवल संगम युग पर ही होता है, और किसी युग में भगवान ज्ञान नहीं देते। तो बहुत सारे भाग्य हम उनके चिंतन करते हम अपने आप को मूल्यवान और भाग्यवान बना सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मैं चंदन हूँ। मैं आत्मा चंदन समान खुशबू फैलाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो यहाँ पर बाबा ने जिक्र किया है दो बातों का, कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, तकदीरवान हूँ, वैल्यूएबल हूँ, और आगे का जो पैराग्राफ है उसमें बाबा ने कहा कि हर्षित मुक्ता। अगर मन में कोई आकर्षण नहीं है दुनियावी, तो आप बच्चे हर्षित रहेंगे। तो फिर से आते हैं चंदन पर कि वो कैसे वैल्यूएबल है। चंदन का वृक्ष जितना पुराना होता है, पुराना मतलब कि जैसे हम पुराने होते जाते हैं ज्ञान में, तो उसके लेयर जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। बीच में वो रेड कलर का होता है, थोड़ा रेडिश, तो उसकी खुशबू आती है। जो नया नया पौधा होता है उसकी खुशबू नहीं आती है। तो भक्ति में हमने इस चंदन का बहुत यूज किया शिव बाबा को ढूंढने के लिए, लेकिन यहां बाबा ने बताया आपने नहीं ढूंढा है, मैंने आपको ढूंढा है। और बाबा ने इस रूहानी खुशबूदार बच्चों खुशबू बाबा ने हमारे अंदर डाली है, तो हम कौन है? चंदन है। हमारे अंदर खुशबू डालने वाला वो बागबान है। और फिर चंदन का यूज हमने कहाँ कहाँ देखा अभी भी इस वर्ल्ड में, कि अगरबत्तियां होती है, उसका बॉडी स्प्रे होते हैं, और क्या होता है, हाँ तेल भी होता है, मरने के बाद भी चंदन की लकड़ी का माला पहना देते हैं, उसका महत्व होता है। फिर पार्लर में भी उसके अलग अलग फेस पैक होते हैं, क्योंकि मधुबन एक ब्यूटी पार्लर है और यहाँ भी उसका यूज किया जाता है। जो सचमुच गोरे नहीं होते ना, वो आर्टिफिशियल, उनको तात लगी रहती है कि क्या इस क्या करके खुशबूदार बनो, सुंदर बनो, तो फिर वो लगाते रहते हैं। तो हाँ, चंदन के वृक्ष पर सांप भी बहुत आकर्षित होते हैं और वो वहीं पे लटके रहते हैं, जहरीले जहरीले। तो ये जो बाबा ने कहा कि अगर मन में हर्षित मुक्ता है, सिर्फ चेहरे पर पाउडर लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर में, मन के अंदर हर्षित मुक्ता है, तो वो तन के ऊपर आप ही दिखाई देगी। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आपके पास मन की हर्षित मुक्ता है, तो वो तन पे, चेहरे पे दिखाई देगी। वो आर्टिफिशियल खुशी के लिए आपको कोई कॉमेडी शो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आत्मा चंदन हूँ। अच्छा, ओम शांति।
परमात्म ग्रंथालय, परमात्म ग्रंथालय, गॉडली लाइब्रेरी,
परमात्म ग्रंथालय, गॉडली लाइब्रेरी। एक्चुअली मेरा और लाइब्रेरी का दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन ऐसे ही किसी फ्रेंड के साथ में लाइब्रेरी में गया, गांव में जो लाइब्रेरी थी, और वहां पे एक लोकमान्य तिलक का स्टैचू था और ऊपर ऐसे लिखत लिखी हुई थी कि ग्रंथालय स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ अस्तत। तो माना लाइब्रेरी जो है स्वर्ग से भी उत्तम होती है। तो ये बात मुझे जची नहीं। वहां तो जाले लगे पड़े हैं, इतनी सारी मिट्टी है, और उसमें है तो क्या न्यूज़पेपर, दुनियावी समाचार, और ये कैसी लाइब्रेरी है जो हमारे सुंदर सतयुग से भी कैसे श्रेष्ठ हो सकती है? क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सतयुग में जाना है, सतयुग में बाबा ने तो इतनी बारी सुंदर सुंदर बातें सतयुग की बताई है। तो वो बात मुझे जची नहीं, और मैं फिर कभी लाइब्रेरी में गया भी नहीं वहां के। लेकिन जब यहाँ सेवा भी लाइब्रेरी में मिली है, तो अब पता चलता है कि सचमुच ये भगवान की लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है, और सचमुच स्वर्ग से भी ये कैसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इस लाइब्रेरी में क्या है, भगवान का एक एक महावाक्य संजोए हुए रखा हुआ है, जो सभी उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये भी तो परमात्मा लाइब्रेरी है, स्थूल लाइब्रेरी। हाँ, तो परमात्मा लाइब्रेरी, तो उसमें कौन सी किताबें होंगी? जैसे यहाँ हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो एक तो लैंग्वेज, फिर कैटेगरी वाइज बुक्स रखी होती है, साइंस की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, फिर अलग 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 बुक्स रखी होती है कैटेगरी वाइज। वैसे उस परमात्मा लाइब्रेरी में कौन कौन सी भाषा होगी? वहां भाषा एक ही है, कौन सी भाषा? प्रेम की भाषा, स्नेह की भाषा। वहां इतनी सारी भाषाएं नहीं है। फिर वहां की जो बुक्स है उसमें कौन से चित्र होंगे? कौन से चित्र होंगे? सतयुग के चित्र होंगे और पांचों स्वरूप होंगे वहां पर उस लाइब्रेरी में हमें देखने को मिलेंगे। बिंदु बाबा भी इतना सुंदर होगा, जो विचित्र है ना, हाँ, चमकता हुआ। और वो जो लाइब्रेरी होगी वो ऑडियो विजुअल होगी, कैसी होगी? हाँ, वो जो लाइब्रेरी है हम जहां पर क्लिक करेंगे वैसे वैसे अंदर चली जाएगी। जैसे कि गूगल पर हम सर्च करते हैं तो एक एक शब्द पर हम जैसे क्लिक करते जाएंगे उसकी गहराई में चले जाते हैं। तो ये जो परमात्म लाइब्रेरी है ये हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। ये हम बस पढ़ते पढ़ते खो जाएंगे और इस लाइब्रेरी में बहुत शांति होगी। वहां पे साइलेंस का बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहां पर लाइब्रेरियन स्वयं ब्रह्मा बाबा है, दीदी है, मनमोहिनी दीदी बैठी है वहां पे।
वहां के नियम क्या है?
हाँ, यहाँ की
टाइमिंग क्या है?
यहाँ की लाइब्रेरी के जो होता है टाइमिंग होता है, फिर अगर बुक समय पर नहीं लौटाएंगे तो फाइन पड़ता है। और फिर इस लाइब्रेरी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपको अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको कुछ पे करना पड़ता है तभी बुक मिलेगा। तो इस लाइब्रेरी में, इस परमात्म लाइब्रेरी में हमें क्या पे करना है? अपना समय देना है सिर्फ। और कितना भी देर तक आप बुक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, दिन रात पढ़ सकते हो।
अखबारें कौन कौन सी है, न्यूज पेपर्स कौन कौन से परमात्मा लाइब्रेरी?
हाँ, वहाँ पर न्यूज
चैनल, वर्ल्ड टाइम्स,
वर्ल्ड टाइम्स है,
संदेश,
पुरानी दुनिया का भी समाचार वहाँ बैठ के बाबा देखते हैं, रावण का समाचार, फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर देवी देवताओं की तैयारियां कहाँ तक बने हैं, फिर साइंस वाले क्या कर रहे हैं, वो भी उस न्यूज़पेपर में आता है।
तो ये टॉपिक पर आप अलग से प्रिपेयर करना होगा। परमात्मा लाइब्रेरी ग्रंथालय। ओम शांति।